लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे कलीसिया के विभिन्न समूहों और कलीसियाई अभियानों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि वे प्रतिदिन अपने सुसमाचार प्रचार मिशन की पुनर्खोज कर विश्व के जरूरतमंदों की सेवा के प्रति अपने करिश्मे को समर्पित रखें। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे प्रसारण में प्रस्तुत है सामायिक लोकोपकारी चर्चा भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही हैं सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओं, चक्रवाती तूफान मोका ने 14 मई को म्यांमार और बांग्लादेश के तट पर स्थानीय समय अनुसार दोपहर लगभग 3 बजे दस्तक दी, जिसके परिणाम स्वरूप भारी वर्षा के साथ तूफान आया और 175 मील प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चली। हालांकि तूफान का सबसे भयावह चरण बीत चुका है, लेकिन अब भी भूस्खलन का जोखिम बरकरार है। मोका तूफान ने घरों की छतें उड़ा दी, मछली पकड़ने वालों की नौकाएं ध्वस्त कर दी, पेड़ों और बिजली व दूर संचार की लाइनें उखाड़ दी। इस विनाश ने स्थानीय आबादी को दहला दिया। म्यांमार में संयुक्त राष्ट्र के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर और मानवीय सहायता समन्वयक रामनाथन बालाकृष्ण ने बताया, संभवतः लगभग 54 लाख लोग इस तूफान के रास्ते में आए। हम इनमें से लगभग 31 लाख लोगों की आबादी को तूफान की तबाही से सर्वाधिक प्रभावित समझते हैं और इस आकलन में आश्रय गुणवत्ता, खाद्य असुरक्षा व कमजोर वहन क्षमता जैसे संकेतक शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष ने आगाह किया है कि चक्रवाती तूफान मोका के कारण संवेदनशील समुदायों के लाखों बच्चे बीमारी, कुपोषण, उपेक्षा, शोषण और हिंसा के जोखिम का सामना कर रहे हैं। दुनिया के सबसे बड़े शरणार्थी शिविर बांग्लादेश के कॉक्सेस बाजार में 10 लाख रोहिंग्या शरणार्थियों को तूफान का कहर झेलना पड़ा, जिनमें लगभग आधे बच्चे थे। यह शरणार्थी शिविर दुनिया के सबसे तंग स्थानों में से एक है, जहां बच्चे बीमारी, कुपोषण, उपेक्षा, शोषण और हिंसा जैसी परिस्थितियों के प्रति संवेदनशील लोग रहते हैं। बच्चे नाजुक अस्थायी आश्रयों में रहते हैं, जहां मिट्टी धंसने का भी खतरा होता है। संयुक्त राष्ट्र के स्वतंत्र मानव अधिकार विशेषज्ञों के एक समूह ने गुरुवार को कहा कि अफगानिस्तान में दंड के क्रूर व गरिमाहीन तरीके और मृत्यु दंड का प्रयोग व निष्पक्ष मुकदमों की गारंटियों का अभाव सब मिलकर अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करते हैं और उन्हें तत्काल रोका जाना होगा। इन 10 मानव अधिकार विशेषज्ञों और महिलाओं व लड़कियों के खिलाफ भेदभाव पर कार्यकारी समूह के सदस्यों की तरफ से तात्कालिक पुकार ऐसे समय में आई है जब तालिबान द्वारा नियुक्त किए गए सुप्रीम कोर्ट ने संगसारी यानी पत्थर मारकर दंडित करना, कोड़े और बेत मारकर दंडित करना और लोगों को दीवारों के नीचे दफनाने जैसे दंडों का निर्णय सुनाए हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं महबूब खान।
इन मानवाधिकार विशेषज्ञों द्वारा जारी प्रेस वक्तव्य में कहा गया है कि अफगान सुप्रीम कोर्ट के कार्यकारी उप प्रमुख ने 4 मई को घोषणा की थी कि उन्होंने 175 लोगों को बदले की कार्रवाई जैसे दंड और 37 लोगों को संगसारी के जरिए दंड देने के निर्णय सुनाए थे। अनेक अन्य लोगों को भी ईश्वर के विरुद्ध अपराधों के लिए दंडित किया गया, जिनमें कोड़े और बेंत मारना शामिल था। मानवाधिकार विशेषज्ञों ने कहा कि संसारी और किसी को दीवार के नीचे दफनाया जाना उत्पीड़न और अन्य तरह के क्रूर, अमानवीय, अपमानजनक बर्ताव या दंड के दायरे में आता है। ये क्रूर दंड अंतर्राष्ट्रीय कानून के विरुद्ध हैं।
सूडान में लगभग 3 हफ्तों से जारी भीषण लड़ाई के बाद युद्धरत पक्षों ने आम नागरिकों की रक्षा सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। सूडान में संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष अधिकारी ने इस घोषणा को सही दिशा में लिया गया एक पहला और महत्वपूर्ण कदम कहा है। देश में परस्पर टकराव के बीच हालात नाजुक है और भूखमरी की स्थिति रिकॉर्ड स्तर तक पहुंचने की आशंका बढ़ रही है। कुछ और जानकारी के साथ सचिन गौड़।
सूडान में संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिनिधि और यूएन मिशन के प्रमुख वोल्कर पर्ट्स ने बताया कि युद्धरत पक्षों ने अंतर्राष्ट्रीय मानव कल्याण और मानवाधिकार कानूनों का सम्मान करने पर सहमति जताई है। साथ ही अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों से सैनिकों को वापस बुलाने की भी बात कही गई है। वोल्कर पर्ट्स ने शुक्रवार को पोर्ट सूडान शहर से जिनेवा में पत्रकारों को जूम लिंक के जरिए इस आशय की जानकारी दी। विशेष प्रतिनिधि वोल्कर पर्ट्स कह रहे थे कि उनका उद्देश्य आपसी सहमति से संघर्ष विराम पर पहुंचना है, जो कि एक तरफा घोषणाओं पर आधारित संघर्ष विराम की तुलना में उसे अधिक सम्मान व स्थिरता प्रदान करेगा। यूएन मिशन के प्रमुख ने भरोसा जताया कि अगले कुछ दिनों में सऊदी अरब और अमेरिका के मध्यस्थकारों के तत्वाधान में जेद्दा शहर में हो रही इस चर्चा के जरिए ऐसी किसी सहमति पर पहुंचा जा सकेगा। सूडान में नागरिक शासन के मुद्दे पर मतभेदों की वजह से 15 अप्रैल को सूडान के सशस्त्र बलों और अर्धसैनिक बलों के बीच लड़ाई शुरू हुई। हिंसक झड़पों में अब तक सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है, हजारों अन्य घायल हुए हैं। सूडान से जान बचाकर अन्य देशों में शरण लेने वाले लोगों की संख्या 2 लाख के आंकड़े को पार कर गई है। इससे पहले विश्व खाद्य कार्यक्रम ने चेतावनी जारी की थी कि सूडान में पहले से ही गंभीर खाद्य असुरक्षा व्याप्त थी और अब ये रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच सकती है। इससे देश में लगभग 1,90,00,000 लोग यानी 40% आबादी प्रभावित होने की आशंका है।
म्यांमार पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव की विशेष दूत नोएलिन हेजलर ने भारत में अपनी पहली आधिकारिक यात्रा के दौरान गुरुवार को म्यांमार में हिंसा कम करने, राजनीतिक कैदियों की रिहाई और लोगों के मतानुसार नागरिक शासन बहाल करने के लिए क्षेत्रीय एकजुटता पर बल दिया। विशेष दूत नोएलिन ने संकट को हल करके स्थायी शांति की नींव डालने और लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप लोकतांत्रिक शासन की वापसी पर बल दिया है। ज्यादा जानकारी के साथ अंशु शर्मा।
म्यांमार पर विशेष दूत नोएलिन हेजर ने जोर देते हुए कहा कि लोगों की इच्छा व जरूरतों को ध्यान में रखते हुए देश के नेतृत्व वाले समाधानों का समर्थन करने वाला एक एकीकृत क्षेत्रीय दृष्टिकोण जमीन पर ठोस प्रगति कर सकता है, पीड़ितों की पीड़ा तत्काल दूर कर सकता है और एशिया के बीचों बीच हो रही इस तबाही को रोक सकता है। नोएलिन हेजर ने संयुक्त राष्ट्र की विशेष दूत के रूप में भारत की 2 दिवसीय यात्रा के दौरान देश के विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और बांग्लादेश म्यांमार की संयुक्त सचिव स्मिता पंत समेत कई अधिकारियों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि भारत पड़ोसी देश होने के नाते म्यांमार की स्थिति से विशेष रूप से प्रभावित हुआ है। नोएलिन हेजर ने म्यांमार में स्थिति के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में भारत के रचनात्मक प्रयासों की सराहना की और म्यांमार से विस्थापित 53,000 से अधिक लोगों की उदारता से मेजबानी करने के लिए भारत के प्रति संयुक्त राष्ट्र का आभार व्यक्त किया।
संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों और साझेदार संगठनों द्वारा बुधवार को जारी एक रिपोर्ट दर्शाती है कि समय से पहले जन्म होना एक ऐसी खामोश आपात स्थिति है जिसे 10 लाख नन्ही जिंदगियां खत्म हो जाती हैं। यूएन एजेंसियों ने जोर देकर कहा है कि बच्चों के स्वास्थ्य और उनके जीवित रहने की संभावना में तेजी से सुधार लाने के लिए तत्काल एक समन्वित कार्यवाही की आवश्यकता है। कुछ और जानकारी के साथ शिवानी काला।
Born Too Soon, Decade of Action on Preterm Birth शीर्षक वाली इस रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2020 में लगभग 1,34,00,000 शिशु समय से पहले पैदा हुए, जिनमें से करीब 10 लाख शिशुओं की मौत समय से पहले जन्म होने के कारण उपजी जटिलताओं की वजह से हो गई। ये रिपोर्ट यूनिसेफ, WHO और मातृत्व, नवजात शिशु और बाल स्वास्थ्य के लिए साझेदार एजेंसी PMNCH सहित विभिन्न संगठनों ने मिलकर तैयार की है। इन एजेंसियों का कहना है कि मातृत्व और शिशु स्वास्थ्य के साथ साथ मृत जन्म की रोकथाम के प्रयासों में प्रगति थम रही है। सरकारों, दानदाताओं, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, माता पिता और स्वास्थ्य कर्मियों के साथ साझेदारी में प्रयास के जरिए इस खामोश आपात स्थिति के बारे में लोगों को सचेत किया जा सकता है। रिपोर्ट दर्शाती है कि समय से पहले जन्म होना बाल मौतों का एक प्रमुख कारण है।
आज के सभी विषय संयुक्त राष्ट्र हिंदी समाचार से लिए गए थे। अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत और उसके बाद समाचार। वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस ने ट्वीट कर सभी ख्रिस्तियों से दुख तकलीफ में ईश्वर पर भरोसा रखते हुए उन लोगों के लिए प्रार्थना करने और मदद करने हेतु प्रेरित किया जो तकलीफ में हैं। ट्वीट संदेश में संत पापा ने लिखा, ख्रिस्तीय पीड़ा की गंभीरता को कम नहीं करते, वे प्रभु की ओर अपनी आंखें उठाते हैं और विपत्ति की मार झेलते हुए उन पर भरोसा करते हैं और पीड़ित लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। वे अपनी आंखें स्वर्ग पर रखते हैं, लेकिन उनके हाथ पृथ्वी पर अपने पड़ोसी की ठोस सेवा करने के लिए फैले हुए हैं। उधर वाटिकन सिटी में जबरन घुसने के आरोप में एक 40 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। गुरुवार की शाम कार चला रहे एक व्यक्ति ने वाटिकन सिटी के मुख्य प्रवेश द्वारों में से एक के माध्यम से प्रवेश किया और प्रेरितिक भवन के दमासुस प्रांगण तक पहुंचने में कामयाब रहा, जहां उसे वाटिकन के जेंडर मेरी ने पकड़ लिया। यह घटना संत अन्ना प्रवेश द्वार पर करीब रात 8 बजे हुई। वाटिकन प्रेस कार्यालय के अनुसार वाटिकन के संत अन्ना प्रवेश द्वार पर स्विस गार्ड द्वारा एक व्यक्ति को वाटिकन में प्रवेश करने से रोका गया था और फिर उस व्यक्ति ने प्रवेश द्वार छोड़ने के बाद फिर से तेज गति से गाड़ी चलाते हुए स्विस गार्ड और जेंडर मेरी कोर की दो चौकियों को मजबूर करते हुए वाटिकन सिटी में प्रवेश किया। गेट पर पहरा कर रहे जेंडर मेरी कार को रोकने के प्रयास में वाहन के सामने के टायर की दिशा में एक गोली चलाई। टक्कर लगने के बावजूद गाड़ी अपने रास्ते पर चलती रही। इसके बाद जेंडर मेरी ने एक आक्रमण के लिए अलार्म बजाया और संत पेत्रुस महागिरजाघर के पीछे वाटिकन उद्यान, संत मार्था प्रांगण, जहां संत पापा का निवास स्थित है, तक पहुंचने वाले मार्ग को अवरुद्ध कर दिया गया। इस बीच कार संत दमासुस प्रांगण तक पहुंच गई। वहां वह व्यक्ति कार रोककर खड़ा हो गया और स्वतंत्र रूप से कार से बाहर निकल गया। जेंडर मेरी कोर ने तुरंत उसे गिरफ्तार कर लिया। लगभग 40 वर्षीय व्यक्ति को तुरंत वाटिकन सिटी राज्य के स्वास्थ्य निदेशालय के डॉक्टरों ने निरीक्षण किया और उसे मानसिक परिवर्तन की गंभीर स्थिति में पाया। वह वर्तमान में न्यायिक अधिकारियों के नियंत्रण में जेंडर मेरी बैरक के नए परिसर में एक जेल सेल में है। उधर असीसी शहर में 14 से 20 मई तक कैथोलिक महिला संगठनों के विश्व संघ UMOFC की महासभा में 38 देशों से आई 800 से अधिक महिलाएं भाग ले रही हैं। महासभा के कार्यक्रम में कानून और नियमों में सुधार, नई परियोजनाएं, नए अध्यक्ष और कार्यकारी परिषद का चुनाव, तीर्थ यात्रा और प्रार्थना के क्षण हैं। भारत की कैथोलिक महिला परिषद की 13 महिला सदस्य इटली के असीसी में आयोजित महासभा में भाग लेने आई हैं। इनमें CCWI की अध्यक्ष श्रीमती जूलियट राममूर्ति, जो WUCWO बोर्ड की सदस्य भी हैं। 10 महिलाओं ने भारत के उत्तर पूर्वी राज्य मेघालय से शिलोंग महाधर्म प्रांत का प्रतिनिधित्व किया है। झारखंड से श्रीमती अनीता रानी टोपनो और बागडोगरा पश्चिम बंगाल से श्रीमती फुलजेंसिया टोपो अपने धर्म प्रांत का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। 13 मई को संत पापा फ्रांसिस ने UMOFC की 1800 महिलाओं का वाटिकन में स्वागत किया। उनमें से कई के लिए एक अनूठा क्षण था, जो पहली बार संत पापा से मुलाकात किए और उनके शब्दों से उत्साह और उदारता के साथ अपने मिशन को जारी रखने के लिए प्रोत्साहन प्राप्त किया। मुलाकात के दौरान संत पापा ने कहा, आप जो कर रही हैं उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और मैं आपको प्रोत्साहित करता हूँ कि आप अपनी परियोजनाओं और गतिविधियों में उत्साह के साथ सुसमाचार प्रचार के पक्ष में आगे बढ़ें। इसके बाद असीसी में महासभा 14 मई को शुरू हुई। कैथोलिक महिला संगठनों के विश्व संघ की वर्तमान महासचिव मरिया लिया जेवेरनो ने कहा कि दुनिया के विभिन्न हिस्सों से आने वाली ये महिलाएं शांति की दुनिया के लिए मानव बंधुत्व के कारीगर बनना चाहती हैं। उधर निकारागुआ में समाचार आउटलेट ने गुरुवार को बताया कि एक और कैथोलिक विश्वविद्यालय को बंद कर दिया गया है। निकारागुआन आंतरिक मंत्रालय ने स्वैच्छिक विघटन के निर्धारण के तहत निष्कलंक गर्भाधान कैथोलिक विश्वविद्यालय को स्थायी रूप से बंद कर दिया। मानागुआ महाधर्म प्रांत द्वारा विश्वविद्यालय चलाया जाता है और इसमें सेमिनारियों के लिए दर्शन शास्त्र और ईश शास्त्र की शिक्षा प्रदान की जाती थी। पिछले एक साल में निकारागुआ के अधिकारियों ने इस स्वैच्छिक विघटन के तहत 17 अन्य निजी विश्वविद्यालयों को बंद कर दिया है। आलोचकों का कहना है कि सरकार संस्थानों को बंद करने के लिए इस कानूनी रास्ते का इस्तेमाल उन लोगों पर दबाव बनाने के तरीके के रूप में करती है जो इसे अपने शासन का विरोध करने वाले के रूप में देखते हैं। विदित हो कि निकारागुआ में मतगाल्फा धर्म प्रांत के धर्माध्यक्ष रोलांडो आल्वारेज का फरवरी में उनकी नागरिकता छीन ली गई और उन्हें 26 साल की जेल की सजा सुनाई गई। परम धर्म पीठ का वर्तमान में निकारागुआ में कोई राजनयिक प्रतिनिधित्व नहीं है। मोनसिन्योर मार्सेल डियाफ ने सरकार के अनुरोध पर 17 मार्च को देश छोड़ दिया। उधर संयुक्त राष्ट्र ने बुधवार को कहा कि सूडान की आधी से अधिक आबादी को अब सहायता और सुरक्षा की आवश्यकता है क्योंकि नागरिकों ने खार्तूम क्षेत्र में हवाई हमलों और सैन्य गुटों के बीच झड़पों के कारण आश्रय मांगा है। संयुक्त राष्ट्र ने सूडानियों की सहायता के लिए 3 बिलियन की एक अपील शुरू करते हुए कहा कि 25 मिलियन लोगों को सहायता की आवश्यकता है। सूडान में अब तक की सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई, जहां संघर्ष से पहले लगभग 15 मिलियन लोगों को सहायता की आवश्यकता थी। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।